नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं मुंबई का एफएम गोल्ड चैनल। आज कार्यक्रम छूलो आसमान में आपसे रूबरू होंगे डॉक्टर मोनिका सूद भाटिया। ये है मैनेजिंग डायरेक्टर CIMS मेडिका फॉर इंडिया एंड मिडल ईस्ट एंड रीजनल डायरेक्टर MIMS। इनसे बातचीत कर रहे हैं विकास मिटसन, जो CMD नजारा टेक्नोलॉजीज के हैं, और प्रेसिडेंट IBG एंड दी ऑनररी काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली।
आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका भाटिया। सबसे पहले हम आपको वेलकम करेंगे, ये मेरा 50th शो है। वेलकम डॉक्टर भाटिया। ये हैं MD एट सिम्स मेडिका, लार्ज हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइडर। ये जैपनीज कंपनी है। डॉक्टर भाटिया इंचार्ज हैं, MD हैं इंडिया के और मिडल ईस्ट के।
थैंक यू मिस्टर विकास। सबसे पहले मुझे ये सुन के बहुत ही खुशी हुई कि आपका 50th शो, एंड मैं लकीली आई एम द पर्सन जो आपके 50th शो पे यहाँ पे मौजूद हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू दिस प्रोग्राम।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो ये जाना सनम। प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम।
तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम।
तुझे देखा तो ये जाना सनम।
Oh,
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम।
आज हैं डॉक्टर मोनिका भाटिया, इनके बारे में तो मैंने अभी आपको बताया। ये बताइए डॉक्टर भाटिया, आपके अर्ली डेज क्या थे, स्कूल कॉलेज, क्या आप मुंबई के हैं या बाहर के हैं, आपके इसके पहले के जॉब्स क्या थे?
मैं चंडीगढ़ की हूँ, फ्रॉम द सिटी ब्यूटीफुल, एंड मेरा स्कूलिंग सारा चंडीगढ़ में हुआ, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में। उसके बाद नाइन्थ और टेंथ में अम्बाला से, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी से हुआ। एंड डॉक्टर हूँ मैं, एक डेंटिस्ट हूँ। अपने बचपन के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो तो मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट याददाश्त है। तो बचपन में मैं एक प्रिंसेस जैसे होती थी घर में। मेरे फादर डायरेक्टर फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशंस में थे। अच्छा। और बहुत ही इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग थे। और मेरी मदर हाउसवाइफ थी। और मेरे दो बड़े भाई हैं, एक मुझसे 12 इयर्स बड़े और एक मुझसे 10 इयर्स बड़े। तो पूरा बचपन मैं बहुत ही पैम्पर्ड और बहुत ही, हाँ बिल्कुल, घर की बेबी थी। लेकिन उस टाइम तक मुझे बिल्कुल भी फोकस नहीं था किसी चीज़ का। हालांकि मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर चीज़ पे मेरा लगाव या खास फोकस नहीं था। फिर जब मैं 13 इयर्स की थी तो मेरी मदर बीमार हो गई। अच्छा। और हॉस्पिटल ले गए उनको। वहाँ पे डायग्नोस हुआ कि उनको ब्लड कैंसर है। और उसके बाद वो एक साल हॉस्पिटल में रही और काफ़ी महीने मैंने भी उनके साथ हॉस्पिटल्स में बिताए। तो छुट्टियों में मैं उनके साथ पास हॉस्पिटल में जाके वहीं बैठी रहती थी। और उसके अलावा जब मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी तो फिर अलग अलग लोगों के घर पे मैंने स्टे किया है। मेरे डैड तो हॉस्पिटल में मम्मी के साथ ही थे और भाई भी वहाँ पे थे। तो मैं अलग अलग अंकल आंटी जिनके साथ बहुत कम जिनको जानती थी, तो उनके घर महीनों महीने मुझे अकेले रहना पड़ा। तो उस पीरियड में मेरी लाइफ मेरे ख्याल से बिल्कुल चेंज हो गई। जिसको ये भी नहीं पता था कि अपने जूते उतार के कहाँ रखने कैसे रखने, उसको सब कुछ एकदम बदल गया। तो बस जब तक मैं 14 की हुई नहीं थी तो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरा फोकस एकदम से अचानक ही बढ़ गया, पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ। कहते हैं ना कि आपका जब कोई एक पेरेंट गुजर जाता है तो आपका हेवन में एक एंजल आपके लिए पैदा हो जाता है। तो शायद मेरी मम्मी का ऐसा ही कुछ रोल था कि उनके जाते ही मेरा लाइफ अपने आप ही बहुत फोकस में और उसमें आ गई। उसके बाद मैं आगे गई, मैंने जाके मेडिकल कॉलेज में गई, डेंटल कॉलेज में गई। मैं डेंटिस्ट हूँ और मैं टॉपर थी कॉलेज की। मुझे ऑनर्स मिले एनाटॉमी फिजियोलॉजी कुछ सब्जेक्ट्स में और बहुत अच्छा किया मैंने। लेकिन फिर वापस आके पता चला कि मेरे डैड को अल्जाइमर्स हो गया है। तो मेरे डैड जिन्होंने मेरी मम्मी के एब्सेंस में, मेरी मम्मी से अच्छी मम्मी बन गए थे वो मेरे लिए। जब उनको अल्जाइमर्स शुरू हुआ तो वो मेरे लिए सेकंड शॉक ट्रीटमेंट था। तो काफी साल उनका अल्जाइमर्स चलता रहा, इस हालत तक पहुंचा कि वो जब हमें पहचानना भी भूल गए सबको। तो कुछ साल पहले उनकी भी डेथ हो गई। मैं एक बात कहूंगी कि कहते हैं लाइफ में सिर्फ 10% चीजें होती हैं जो एक्चुअली आपको याद रहती हैं, बाकी की 90% चीजें तो आपका रिएक्शन होती है उन 10% चीजों को। तो मेरे पेरेंट्स का जाना मेरे ख्याल से उन 10% चीजों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए।
याद किया, ओ तेरा नाम।
तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया।
हार्वर्ड भी गए?
हाँ जी, मैं हार्वर्ड गई हूँ। तो मैंने पहले मैं डेंटिस्ट्री करी, फिर मैंने प्रैक्टिस भी की कुछ साल, और फिर मैंने प्रोफेसर भी थी, मैंने पढ़ाया एक कॉलेज में। उसके बाद मैंने एमबीए करा सिम्बायोसिस से। तो मैंने हर 10 साल बाद एजुकेशन करी है। तो 1997 में डेंटिस्ट्री की, फिर 10 साल बाद सिम्बायोसिस से किया, फिर 10 साल बाद हार्वर्ड गई, तो 2016 में मैं हार्वर्ड गई थी। हार्वर्ड का एक्सपीरियंस तो मेरी लाइफ का मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। कुछ लोग कहेंगे आपने इतना टाइम दिया, इट्स एक्सपेंसिव, खर्चा भी होता है, तो क्या आपने वहाँ सीखा। मैं सोचती हूँ कि पैसे की इससे और टाइम की इससे बेहतर यूटिलाइजेशन हो ही नहीं सकती कि आप अपनी डेवलपमेंट में अगर वो लगाएं, तो उससे ऊपर तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो सकता।
ये हार्वर्ड आपने करा, ये काम के बीच में करा?
हाँ जी, थैंक्स टू माई जापानीज मैनेजमेंट ऑल्सो कि उन्होंने काम के बीच में किया और उन्होंने मुझे छुट्टी दी है करने की। हाँ जी, सपोर्ट किया बिल्कुल।
Thank you.
हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना।
हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका भाटिया, इनसे हमारी बातचीत हो रही है। मैं हूं विकास मित्रसेन। तो हार्वर्ड से आप निकल के वापस आए, आप ये बताइए कि इतनी बड़ी जापानीज कंपनी के आप एमडी बन गए।
हाँ जी।
तो ऐसी क्या स्पेशलिटी थी?
मैं आपको पहले बताती हूँ कि मेरी कंपनी क्या करती है। तो मेरी कंपनी एक हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। मैं उसको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं और फार्मासिस्ट और नर्सेज, जितने भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग होते हैं, इनको सारी जिंदगी पढ़ाई करनी पड़ती है।
हाँ,
क्योंकि
एजुकेटेड करते रहना पड़ता है।
हाँ जी, क्योंकि नई से नई दवाइयाँ, नई से नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। अगर उनको उसकी जानकारी नहीं होगी तो वो अपने पेशेंट्स का, मरीजों का सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो हमारी कंपनी का काम है इनको एजुकेट करना, इनको वो जानकारी देना ताकि ये आगे मरीजों का भला कर सके और अच्छे से काम कर सके। अलग अलग मीडिया से, आसान तरीके से, इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव तरीके से हमारी कंपनी ये एजुकेशन इनको प्रोवाइड करती है। बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, मैं बहुत सारी पब्लिकेशंस के पब्लिशर हूं। हाँ जी। और डिजिटल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये सब हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी अभी तो मैं मिडिल ईस्ट भी देख रही हूँ। मेरे बहुत सारी मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो मैं इस कंपनी में हूँ बहुत सालों से। लेकिन ये बहुत बार पहले एक ब्रिटिश कंपनी थी, फिर एक जापानीज कंपनी हुई, तो तीन मर्जर्स हुए हैं।
अच्छा।
तो मैं तो यही बोलूंगी कि हर मर्जर में मेरी तो मेरे लिए तो ग्रोथ ही हुई है।
तो इज इट ड्यू कि आप स्पिरिचुअल भी बहुत हैं, तो आप जो अपने स्टाफ को इतना लुक आफ्टर करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, ये आपके स्पिरिचुअलिटी के कारण है?
तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है। तो मेरे को लगता है कि मतलब गॉड हमारे अंदर ही है। तो जो भी हम अपने से बात करते हैं ना, खुद से जो सेल्फ टॉक करते हैं, वो बहुत सोच के करनी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली हम अपने अंदर के भगवान से या यूनिवर्स से कर रहे होते हैं। तो हम अगर अच्छा सोचते हैं, जो सोचते हैं, जो विजुलाइज करते हैं, जो सच्चे मन से मांगते हैं, वो हमें मिलता ही मिलता है। तो मैं इस टाइप की मतलब आउटवर्ड वाली स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा अंदर वाली स्पिरिचुअलिटी में भरोसा रखती हूँ। और स्टाफ तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन ही है कि अपनी टीम के लिए कुछ कर जाना, उनकी जिंदगी को आगे सेटल कर जाना, उनकी फैमिलीज को आगे सेटल कर जाना। यही मैं अपने काम में सबसे ज्यादा इंजॉय करती हूँ। कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आपने अपने ही लोगों का ख्याल नहीं रखा और बाहर जाके हर जगह आप चैरिटी कर रहे हो, उसमें मैं थोड़ा कम विश्वास करती हूँ।
तो ये आपने ना कहीं लिखा था कि आप प्रिंट से, आपकी कंपनी प्रिंट में थी मोस्टली, जर्नल वगैरह।
हाँ जी, पहले तो
सारा
प्रिंट, सब कुछ प्रिंट से ही होता था, सारा मीडिया।
से डिजिटल चले गए।
हाँ जी, हाँ जी।
और प्रॉफिटेबिलिटी इसके कारण बढ़ी या कम हुई कंपनी?
देखिए, एक्चुअली डिजिटल में जाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया था कि हम तो डिजिटल चले जाएंगे, पर डॉक्टर्स को भी तो डिजिटल होना है। जो हमारे को, जो पढ़ने वाले हैं, जिनको एजुकेट करना है, उनका डिजिटल होना पहले सबसे बड़ा चैलेंज था। प्रॉफिट वगैरह तो फिर मैं वही कह रही हूँ ना कि प्रॉफिट ये सब तो साइड इफेक्ट है। पहले अगर आप सही तरीके से उस चीज़ को अप्रोच करेंगे, और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और रूरल में इतने डॉक्टर हैं, छोटे शहर में इतने डॉक्टर हैं, डिजिटली आप सबको पहुंचना कितना आसान हो गया है हर इन्फॉर्मेशन का। तो जब हम उसको सही तरीके से अप्रोच करके हम सब डॉक्टर्स तक पहुंचे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो एज अ साइड इफेक्ट बड़ी ही बड़ी है।
अपने एफर्ट से मीडिया, फार्मा और प्लस आपके गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट्स बहुत हाई हैं, वो मैंने देखे। कभी आपको मैंने प्रेसिडेंट के साथ देखा है, कभी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के साथ देखा है
जी।
तो ये सब हुआ कैसे?
एक्चुअली हमारी जो एक पब्लिकेशन है सिम्स, जिसका नाम है, जिसके नाम से पूरी कंपनी का नाम है, वो 40 साल से भी पुरानी पब्लिकेशन है और डॉक्टर्स उसको अपनी बाइबल मान के चलते हैं।
अच्छा।
तो मैं जैसे पहली बार डॉक्टर हर्षवर्धन को मिली थी तो उन्होंने यही बोला था कि ये तो शुरू से मेरी बाइबल रही है ये।
अच्छा।
किताब तो सिम्स के नाम से इंट्रोडक्शन तो अच्छे से हो जाता है सबके साथ, और उसके बाद साथ में मिलके काम करने के जो आइडियाज हैं, जो मैंने गवर्नमेंट को भी प्रपोज किए हैं और कुछ चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो एक ही, मतलब गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है कि डॉक्टर्स को एजुकेट करना या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इंडिया में बहुत ऊपर ले जाना और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रखना या फिर मरीजों को सस्ती दवाइयां प्रोवाइड करना, तो वही काम तो हम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमारा लक्ष्य सेम है तो मिलके काम करना काफी आसान हो जाता है।
कॉन्फ्रेंसेस भी आप काफी रखते हैं?
हाँ जी, कॉन्फ्रेंसेस
सेम थिंग।
हाँ जी, ऐसा है ना कि खाली अगर एजुकेशन करेंगे, प्रिंट में करेंगे, डिजिटल में करेंगे, तो वो उससे पूरा पर्पस वैसे सॉल्व भी नहीं होता है। जब लोग आके कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, जो लाइव एक दूसरे को मिलने का, नेटवर्क करने का जो बेनिफिट है ना, वो उससे असली लर्निंग आती है। एक दूसरे से बात करने से, मिलने से, वो तो मेरा पर्सनली भी लाइफ का मोटो है कि सोशल लोगों से मिलके उनसे सबसे ज़्यादा अच्छे से सीखा जा सकता है। तो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स को यही फायदा होता है कि एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस वो सीख पाते हैं। प्लस क्या होता है ना, जो कुछ जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स सुन के और देख के काफी और डॉक्टर्स फिर उनको फॉलो करते हैं, उससे भी बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरी कंट्री में फैलती हैं।
आपकी कंपनी है जैपनीज?
हाँ जी।
यहाँ पे कितना इंडिपेंडेंस है आपको?
100%
या वहाँ से ही जो बोलते हैं वो यहाँ पे आप कैरी आउट करते हैं?
नहीं, बिल्कुल 100% इंडिपेंडेंस है और मेरा पूरा काम जो है इंडिया में वो इंडिया के हिसाब से होता है कम्प्लीटली। जो इंडिया को चाहिए, जैसी इंडिया की जरूरत है, जिस स्टेज में इंडिया है, उस हिसाब से हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं और उस हिसाब से मैं नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेट करती हूँ, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आती हूँ और उसमें मेरी मैनेजमेंट का 100% सपोर्ट है मुझे।
अभी अभी हाल में आपने मिडल ईस्ट आपको दिया है?
हाँ जी।
आई थिंक एक साल ही नहीं हुआ है।
हाँ जी।
तो एंटायर मिडल ईस्ट भी आपके अंडर आ गया?
हाँ जी, एंटायर मिडल ईस्ट भी।
तो ट्रैवलिंग भी बढ़ गई होगी?
ट्रैवलिंग तो काफी है, बस इतना इंडिया में भी हमारे ऑफिसेज पूरे इंडिया में हैं।
अच्छा।
तो मैंने इंडिया का काम, मेरे अभी टीम बहुत रेडी हो गई है, वो सब देखने लगे हैं और मैं थोड़ा ज्यादा मिडल ईस्ट पे ध्यान देने लगे।
न्यू मार्केट हो गया ना आपके?
हाँ जी, थोड़ा न्यू मार्केट में ज्यादा टाइम देना पड़ता है समझने के लिए।
आप फिलैंथ्रोपी में भी है ना बिलीव करती हैं?
हाँ,
क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं इसमें?
मैं पर्सनली बीइंग अ वुमेन, मैंने काफ़ी स्ट्रगल्स फेस किए हैं लाइफ में जो एक किसी भी फीमेल को करनी पड़ती हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा मेरे दिल को करीब जो कॉज है वो तो वुमेन एम्पावरमेंट ही है। तो मतलब मैं जैसे एक सिंपल बात बोलना चाहूँगी उसके लिए कि कहते हैं कि एक वुमेन को आगे बढ़ने के लिए एक मर्द, एक आदमी उसकी क्या हेल्प कर सकता है, कैसे सपोर्ट कर सकता है। तो उसके लिए मेरा एक सिंपल कहना है कि ना, एक आदमी इतना ही कर दे कि एक वुमेन को रोके नहीं आगे बढ़ने से, बाकी सब वो खुद कर लेगी। तो उसमें सब कैपेबिलिटी होती है और इंडिया में थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट ऐसा है कि वुमेन अभी प्रोग्रेस कर रही हैं और इंडिपेंडेंस की तरफ जा रही हैं, तो उनको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। वैसे तो बॉर्न मल्टीटास्कर होती हैं, ऐसा तो मैं देखती हूँ कि वो बच्चों को, फैमिली को प्रायोरिटी रखती हैं, वो मैनेज करते हुए वो अपना काम करती हैं, बस उनको करने दिया जाए। इतना अगर कर लिया जाए तो काफ़ी आगे वुमेन बढ़ सकती हैं और वही कॉज मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्लोज है। उसके अलावा हेल्थ भी मेरे एक बहुत ही मेजर कॉज है कि कोई भी, जैसे क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स मैंने बीमारी को ही खोए हैं, तो लोग जिनके पास जो बीमारी से गुजर रहे होते हैं या फिर जो नहीं अफोर्ड कर सकते हो, उनको सपोर्ट करना भी मेरा कॉज है। और इवन पढ़े लिखे और रिच लोगों को ये एक्सप्लेन करना कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है, कि मतलब हेल्थ लॉस्ट तो एवरीथिंग लॉस्ट, वो वाला एक कॉन्सेप्ट मैं जितना हो सके वो
प्रोपगेट करती
हूँ। हाँ जी,
मेरी वाइफ भी कंपनी इंडिपेंडेंटली चलाती है।
Okay.
हाल में मुझे ये बोल रही थी कि आपने मेरे लिए जो बेस्ट काम करा है मुझे रोका नहीं है।
हाँ जी, देखिए बस
आपने मुझे ग्रो करने दिया, जैसे भी मुझे ठीक लगा मैंने अपने कंपनी को लेके ग्रो कर दी गई, या आइडेंटिफाई जो आपने बोली।
राइट, वही ना, इंडिया में अगर मैं इतना सा बस ये एक स्टेप लेना शुरू करें कि एक स्टेप समझें कि रोके नहीं अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपनी सिस्टर को, और उनको भरोसा रखें कि वो आगे बढ़ते हुए पीछे का पीछे कुछ घर का या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने वाली नहीं है। मैं देख रही हूँ कि वैसे बहुत फर्क है पहले से, इंडियन मैन काफ़ी सपोर्टिव हो गए हैं और काफ़ी हाथ बटाने लगे हैं। तो अगर सारी पॉपुलेशन काम करें, ना सिर्फ आदमी बल्कि औरतें भी पूरा काम करें, तो पूरे कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल है।
मैं तो बिलीव करता हूँ, मेरे फैमिली में 4 लेडीज हैं, सो मैं इनको सब एनकरेज करता हूँ कि तुम हर पर्सन अपना काम करो।
इसीलिए तो आप इतना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो इससे मतलब बहुत अच्छा। इट्स मतलब मैं मानती हूँ कि क्योंकि कोई भी सप्रेस्ड क्लास होती है, वुमेन इंडिया में थोड़ा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है तो सप्रेस्ड क्लास ही है। कोई भी सप्रेस्ड क्लास को जब हम ऊपर लेके आते हैं, उसमें अगर हम योगदान दें तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड कर्मा।
अपनी जान को जाते देखा,
आपके अवार्ड्स के बारे में बात कर लें थोड़ा, अवार्ड्स और एक्कोलेड्स काफ़ी मिले हैं आपको।
तो ऐसा है कि जैसे मेरी कंपनी का जो काम है ना, वो ही ओवरऑल देखा जाए तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वो काम है, क्योंकि जब आप इन लोगों को, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी को जब आप एजुकेट करते हैं तो अल्टीमेटली तो पेशेंट्स का ही फायदा होता है। तो इस रीज़न से मेरा काफ़ी रिकग्निशन हुआ, मुझे वुमेन अचीवर अवार्ड मिला और मुझे लीडरशिप पे भी कुछ अवार्ड्स मिले हैं। तो जैसे मैंने बताया कि टीम ही मेरी काफ़ी बड़ी मोटिवेशन है, स्ट्रेंथ है, मैं उनको फैमिली मान के चलती हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न कि लीडरशिप में भी मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिला है। उसके अलावा मेरी कंपनी भी अवार्ड्स, हम लोग भी अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा। तो हम एक दिल्ली में अवार्ड्स करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए और एक बॉम्बे में करते हैं डॉक्टर्स के लिए। तो मेरा मानना है कि ये डॉक्टर्स वगैरह की लाइफ थोड़ा सा काम वाम में इतना बोरिंग हो जाती है, उनको भी कहीं रिकग्निशन मिलता है तो उनको और मोटिवेशन मिलता है बेटर काम करने के लिए। और जो बाकी के लोग होते हैं, जब वो देखते हैं कि किसी को रिकग्निशन मिला है तो ये उनके लिए भी मोटिवेशन होता है और अच्छा काम करने के लिए। तो हम भी इस वजह से काफ़ी रिकग्निशन हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट में, हाँ, इन सबको देते हैं।
अब चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, एसोसिएशंस, ऐसे चीज़ों में भी बहुत एक्टिव है।
हाँ जी,
CII है, PhD चेंबर है, आपने IBG भी लिखा है।
हाँ जी, ऐसा है कि मैं मानती हूँ कि एक सोशली नेटवर्क करने से आपके अच्छे रिलेशनशिप्स जब फॉर्म होते हैं तो आप ट्रस्ट फॉर्म करते हैं और उससे आप अपना बिजनेस भी आगे बढ़ा सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं दूसरे के। ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सपीरियंस आप खुद पहले करें और फिर लर्न करें, दूसरों के एक्सपीरियंसेस लर्न करने से थोड़ा लर्निंग प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा इन सारी मीटिंग्स में और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ, तो इट हेल्प्स, मेरे को सेल्फ डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है और शायद मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे वहाँ जाने से दूसरों के भी मैं काम आ सकूँ।
जरूर,
मेरे लिए सबसे ज़्यादा, हाँ, एक चीज़ है कि मैं मानती हूँ कि जो भी हमने सीखा है, हमने पाया है, वो अगर हम दूसरों को भी सिखा सकें तो मेरी काफ़ी कोशिश रहती है इन टीचिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग पीपल। तो उसमें मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहती हूँ, काफ़ी समय मैं उन सब चीज़ों में देती हूँ कि मैं सबसे अच्छा यही करना रहता है या सबसे अच्छी यही चीज़ रहती है कि आप दूसरे को इस काबिल बना दें कि वो खुद ही सब कुछ कर पाए, रैदर देन आप सबको मदद कर रहे हैं कुछ करने के लिए। आप उनको एम्पावर कीजिए, उन्हीं को, सबको, जो भी आपके नज़दीक सर्कल में आए, जो भी आपके आसपास आए, अगर आप उसको अपने खुद के पैरों पे या और आगे तेज भागने के लिए उसको रेडी कर सके, तो उस चीज़ में मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेती हूँ।
कहावत है कि कोई गरीब आदमी को फिश देने से बेटर है उसको फिशिंग सिखा दो।
बिल्कुल,
तो वो अपने आप ही फिश निकाल लेगा और खा लेगा
और किसी से मांगना
लेगा,
नहीं
किसी
पड़ेगा,
को मांगना नहीं पड़ेगा।
हाँ जी,
तो ऐसी कुछ बात बोली आपने।
बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उन एक्टिविटीज में हर लेवल पे गरीबों से शुरू होके अपने आसपास के लोगों तक, ऐसी एक्टिविटीज में मैं हर लेवल में एंगेज रहती हूँ। मतलब किसी को ऐसे हेल्प करने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, उसको खुद के लायक, अपनी खुद की सारी चीजें वो पूरी कर सके उस लायक बनाने में मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ।
थैंक यू डॉक्टर भाटिया जी।
थैंक यू।
मैं हूँ विकास मित्र सेन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर कि हमारे 3-4 लाख ऑडियंस जो है वो भी एंजॉय कर रहे होंगे ये बात।
थैंक यू सो मच, मुझे भी यहाँ पे बात करके बहुत अच्छा लगा।
आसमान 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम गोल्ड चैनल में, और आज आपके साथ थी डॉक्टर मोनिका सूद बाटिया, जो मैनेजिंग डायरेक्टर सीआईएमएस मेडिका इंडिया एंड मिडल ईस्ट एंड रीजनल डायरेक्टर एमआईएमएस। इनसे बातचीत कर रहे थे विकास मिटिसन, जो सीएमडी नजारा टेक्नोलॉजीज, प्रेसिडेंट ऑफ आईबीजी एंड द ऑनरी काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली। चलते चलते आपको ये बताएं कि हमारी निर्मिती सहायक थी सौलिया शेख, और एफएम गोल्ड की ओर से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।
सबसे सच्चा हर छोटे से छोटा।